अध्याय पांचवा पृष्ठ संख्या 64 शीर्षक सुर सरावली की काव्य भाषा। भाषा मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है, अतः भाषा शास्त्रियों ने विचारों तथा मनोविकारों की अभिव्यक्ति के दो मुख्य साधन बताए हैं, पहला दृश्य और दूसरा श्रव्य। हम अपनी माँ की गोद में बैठे हुए शिशु को अपनी गोद में लेने के लिए जब चुपचाप हाथ बढ़ाते हैं, तब वह हमारी ओर देखता है। वह हमारे चेहरे के भाव को अपनी दृष्टि से देखता है। यदि उसकी दृष्टि में हम अनुकूल दिखाई पड़ते हैं तो वह हुलस कर हाथ बढ़ा देता है। यदि प्रतिकूल दिखाई पड़ते हैं तो मुंह छिपाकर अपनी माँ की गोद से चिपक जाता है। यदि अपने चेहरे से क्रोध का अभिनय करते हैं तो रोने लगता है, प्रेम पूर्वक करते हैं तो हंसने लगता है, तो गोद में आने के लिए हाथ पांव भी मारता है। वह दृश्य अभिव्यक्ति है। मूक व्यक्ति दृश्य संकेतों से बड़े या सूक्ष्म भाव की व्यक्त कर जाते हैं। यह सब होते हुए भी दृश्य संकेतों की एक सीमा है। कठपुतली के दृश्य संकेतों के सूक्ष्म भाव हम इसलिए समझ लेते हैं कि उनका अर्थ हमें श्रव्य संकेतों से समझा दिया जाता है। अतः श्रव्य संकेतों का महत्व निसंदिग्ध रूप से अधिक है। अभिव्यक्ति का दूसरा साधन श्रव्य संकेत उसका दूसरा माध्यम है। दृश्य संकेत द्वारा उनके सूक्ष्म भावों को व्यक्त करना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, कालवाचक तथा अनेक सूक्ष्म विचारों को व्यक्त करने में वह अक्षम है। सभ्यता के विकास के साथ साथ इसी कारण मानव समाज ने श्रव्य संकेतों में अर्थ का आरोप करना आरंभ कर दिया। वे श्रव्य संकेतों की ध्वनियाँ अपनी उत्पत्ति के मूल के अनुसार अनेक प्रकार की होती है। कुछ एक वस्तु द्वारा दूसरी पर आघात करने, कुछ वायु के घर्षण करके निकलने, कुछ विस्फोट आदि से उत्पन्न होती है। इन पर भी मानव समाज ने अनेक अर्थों का आरोपण किया और उनका व्यवहार हम अब भी करते हैं। ताली बजाना, समय सूचित घंटा, मंदिरों गिरजाघरों की घंटे घंटियाँ आदि। पैराग्राफ चेंज। सृष्टि में काल बहुत प्रबल है। वह कदाचित ही किसी को एक स्थिति में रहने देता हो। भाषा भी इसका अपवाद नहीं है। वह भी समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। यह परिवर्तन बहुत धीमे होता है और 150 वर्षों के पश्चात कुछ अंतर स्पष्ट होता है। पृष्ठ संख्या 65। 4-5 शताब्दियों के पश्चात शब्दों के रूप और व्याकरण में इतना अंतर हो जाता है कि उसके पूर्ववर्ती रूप को जानकर उसे समझा नहीं जा सकता। इस प्रकार की परिवर्तित भाषा जब साहित्य में प्रयुक्त होने लगती है, तब उनको अन्य नाम दिया जाता है और उसे एक सांचे में ढालने के लिए व्याकरण भी बना दिया जाता है। वह भाषा फिर भी बदलती रहती है तथा पूर्ववर्ती क्रिया फिर दोहराई जाती है। नवविकसित भाषा पुरानी भाषा से शब्द लेती रहती है। उपलिखित प्रक्रिया से ही संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश तथा अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। नवीन भाषा में मूल भाषा से विकसित शब्दों को तद्भव कहते हैं, क्योंकि वे तत् अर्थात मूल भाषा से उत्पन्न रहते हैं। अतः जब वे नवीन भाषाएं मूल भाषा के शब्दों को यथायत ग्रहण करके अपने व्याकरण के अनुसार प्रयुक्त करती है, अर्थात मूल भाषा के समान शब्द कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। अपभ्रंश का विकास स्थूल रूप से 5वीं शताब्दी से माना जाता है। यद्यपि 12वीं शताब्दी के अनंतर भी इसका साहित्यिक भाषा के रूप में व्यवहार हो रहा था, फिर भी 10वीं सदी के पश्चात आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के प्रारंभ में हिंदी को केवल दो बोलियां साहित्य में प्रयुक्त हुई है। ये हैं अवधि और ब्रजभाषा। साहित्य में अवधि का व्यवस्थित प्रयोग मुल्ला दाऊद के चंदायन से मिलता है, जो संवत 1427 विक्रमी अर्थात सन 1370 ईस्वी की रचना है। इस प्रकार ब्रजभाषा का व्यवस्थित प्रयोग सूरदास की रचनाओं में ही मिलता है, जिनका आरंभकाल संवत 1560 विक्रमी सन 1530 ईस्वी के आसपास है। इस दृष्टि से साहित्य में ब्रजभाषा का प्रयोग अवधि से परवर्ती जान पड़ता है। इस दृष्टि से साहित्य में ब्रजभाषा का प्रयोग अवधि से परवर्ती मान लेना समीचीन नहीं, अपितु दोनों का विकास एक दशक आगे पीछे होना सरसकर होगा। सामान्य रूप से प्रद्युम्न चरित्र ब्रैकेट में 1411 विक्रमी यानी 1359 विक्रमी रुक्मणी मंगल, स्नेह लीला, महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, ब्रैकेट में 15 शती विक्रम का अंतिम चरण, बैताल 25, ब्रैकेट में 1046 विक्रमी यानी 1489 ईस्वी, चिताई वार्ता, ब्रैकेट में 1450 विक्रमी के लगभग, गीता भाषा, ब्रैकेट में 1557 विक्रमी 1500 ईस्वी तक, आदि में 1557 विक्रमी यानी 1500 ईस्वी आदि में ब्रजभाषा का व्यवस्थित प्रयोग उपलब्ध होता है, परंतु सूरदास की ब्रजभाषा का रूप सुगठित और भली भांति निखरा हुआ है। पैराग्राफ चेंज। ऊपर जिन कृतियों का उल्लेख किया गया है उनके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल समय में जानकारी नहीं रही होगी। उनके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में जानकारी नहीं रही होगी, क्योंकि उस समय तक अपभ्रंश का अधिकांश साहित्य जैन भंडारों के बैठकों में बंधा पड़ा था। फिर भी उन्होंने अपनी तत्वान्वेषणी बुद्धि से समझ लिया था कि सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम प्रयोक्ता नहीं हो सकते। सूरदास की भाषा के संबंध में विचार करते हुए उन्होंने लिखा, इन पदों के संबंध में पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलतु ही ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडोल और परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाली कवियों की उक्ति सुर की झूठी सी जान पड़ती है। पृष्ठ संख्या 66। अतः सुर सागर किसी चलती जाती हुई गीत की परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आचार्य शुक्ल ने सुर सागर की भाषा को चलती हुई ब्रजभाषा कहा है। सूरदास की भाषा ब्रजमंडल की चलती भाषा है। उनमें संस्कृत या फारसी के शब्दों को भरकर क्लिष्ट बनाने का प्रयास नहीं है। पैराग्राफ चेंज। सूरदास की भाषा ब्रजमंडल की चलती भाषा है। उनमें संस्कृत या फारसी के शब्दों को भरकर क्लिष्ट बनाने का प्रयास नहीं है। पूर्व में उल्लिखित है कि अपभ्रंश के पश्चात हिंदी क्षेत्र में मुख्यतः दो ही बोलियों का साहित्य में प्रयोग हुआ है। ये बोलियां हैं अवधी तथा ब्रजभाषा। हिंदी क्षेत्र में अनेक प्रचलित बोलियां हैं, जैसे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौची तथा बुंदेली, पांच पश्चिमी में, और अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, तीन पूर्वी में, पहाड़ी राजस्थानी और बिहारी भी इसी श्रेणी में आ जाते हैं। साहित्य तथा राजनीति की भाषा से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इस तथ्य का विचार कर लेने आवश्यक है। इस तथ्य पर विचार कर लेना आवश्यक है। वस्तुतः प्रारंभ में अवधी का प्रथम प्रयोग मुसलमानों द्वारा सूफी मत का प्रचार करने के लिए किया गया। भारत में जब मुस्लिम शासन स्थापित हो गया तब तो शासक की भाषा हो गई फारसी, जिसका ज्ञान उच्च कुल के हिंदू ही प्राप्त करते थे जो पहले से सुशिक्षित थे, संस्कृत थे और जिनकी हिंदू धर्म में आस्था थी। जिस मत का दर्शन दृढ़ भित्ति पर आधारित न हो, जिनके तर्क का आधार न हो, उनका अनुयायी दृढ़ दार्शनिक आधार पर आधारित धर्मावलंबी को शास्त्रार्थ में कैसे पराजित कर सकता है? ऐसी स्थिति में वह ऐसे लोगों के बीच में अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। ऐसे धर्मावलंबियों के उसी वर्ग में किसी अन्य दुर्बल मत का प्रचार शक्य है जो अपने स्वभाव से असंतुष्ट हो और जिसे अपने धर्म का ज्ञान न हो। हिंदुओं में एक वर्ग ऐसा था जो अपने समाज से असंतुष्ट था और अशिक्षित एवं अपने धर्म से अनभिज्ञ होने के कारण जिनमें आलोचना की भावना भी नहीं थी। ऐसे वर्ग में मत प्रचार का साधन फारसी तो हो ही नहीं सकती थी। ऐसी स्थिति में उनकी बोली को ही प्रचार का माध्यम बनाया जा सकता है। यही कारण था कि सूफियों ने अशिक्षित जनता की बोली अवधी को अपनाया और उसमें लिखित किस्सों की सहायता से अपने मत का प्रचार करने की चेष्टा की। एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुरान केवल भारत में हिंदुओं के साथ अत्यधिक अत्याचार हुए जिनमें सूफियों ने योग दिया। पैराग्राफ चेंज। अब प्रश्न स्वाभाविक है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी को क्यों अपनाया, इसका भी धार्मिक कारण बताया जाता था। पहला कारण यह था कि तुलसीदास रामचरित का आदर्श सामान्य जनता में प्रसारित करके हिंदुओं को संगठित करना चाहते थे। सामान्य जनता संस्कृतज्ञ नहीं थी। दूसरा कारण यह भी था कि अवधी उनके इष्ट भगवान राम की जन्मभूमि की बेली थी। भगवान राम की मातृभाषा भले ही संस्कृत रही हो पर अवधी है तो उनके जन्म क्षेत्र की बोली, अतः उनके साथ भावात्मक संबंध हो जाना स्वाभाविक था। पृष्ठ संख्या 67। भावावेश में बुद्धि संपन्न व्यक्ति भी उसे इष्ट देव की मातृभाषा ही मान सकता है। तीसरी बात, लोहा से लोहा काटा जाता है। इस आधार पर उन्होंने सूफियों की भाषा रचना में मानस भास्वर निर्मित किया।